तारीख 29 मई दिन शुक्रवार, कार्यक्रम दिनभर। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में भूखों की तादाद दुनिया में है सबसे ज्यादा।
ये सब सहारन अफ्रीका या अफ्रीका के जो और भी देश गरीब माने जाते हैं उनसे भी भयंकर सिचुएशन है।
भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच फीफा चुन रहा है नया अध्यक्ष। विवेचना में याद करेंगे 50 साल पहले भारत के 9 पर्वतारोहियों के एवरेस्ट विजय की उपलब्धि को।
कर्नल कुमार ने वॉकी टॉपी पे शाउट किया, कोहली कांग्रेचुलेशंस, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द समिट नाउ। मैंने फिर फटोफट मैसेज इंडिया भेजा तो शाम की रेडियो न्यूज में भी आ गया 20 को।
लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और पहले सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में भूखे लोगों की तादाद में भारत में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे हैं। हालांकि दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी आई है। चीन और पूर्वी एशिया के देशों ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। भारत में भी भूख से पीड़ित लोगों की तादाद में कमी आई है। 1990 में ये संख्या 21 करोड़ 10 लाख थी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि वे ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्तों में सुधारों पर बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। बर्लिन में डेविड कैमरन के साथ मुलाकात के बाद एंगेला मर्कल ने कहा कि सुधारों को लेकर सहमति है और आगे का रास्ता ढूंढा जाएगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा, हम यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्तों में सुधार को लेकर ब्रिटेन के साथ सहयोग करने पर राजी हैं। हम ब्रिटेन की मदद करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जहां चाह वहां रहा, यूरोप की यही परंपरा है और हम भी इसी के मुताबिक काम करेंगे। ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फुटबॉल के वैश्विक संस्था फीफा के अध्यक्ष के लिए ज्यूरिख में 209 सदस्य मतदान कर रहे हैं। पांचवीं बार दावेदारी कर रहे फीफा के वर्तमान अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कहा है कि वे फीफा की साख को दोबारा बेहतर बनाएंगे। पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण फीफा चर्चा में रहा। वहीं चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी प्रिंस अली बिन अल हुसैनी ऑफ जॉर्डन ने कहा है कि सिर्फ वे ही फीफा को भ्रष्टाचार मुक्त नेतृत्व दे सकते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारी ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले भाषण में कहा है कि वे इस्लामिक संगठन बोको हराम से सख्ती से निपटेंगे। बुहारी ने कहा कि बोको हराम का कोई खुदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले चिबोक में एक स्कूल से अगवा की गई 200 से ज्यादा लड़कियों को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस्लामिक स्टेट ने सऊदी अरब में शिया मस्जिदों पर दूसरे आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। पूर्वी प्रांत के शिया बहुल शहर दम्मम में एक मस्जिद पर ताजा हमले में 4 लोग मारे गए। हमलावर चरमपंथी को जब मस्जिद में जाने से रोका गया तो उसने कार पार्किंग में ही खुद को उड़ा दिया। पिछले हफ्ते हुए शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए थे। म्यांमार ने दावा किया है कि नौसेना ने 700 से ज्यादा प्रवासियों को देश के दक्षिणी समुद्र तट से बचाया है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि बचाए गए लोगों में 120 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शुक्रवार को बैंकॉक में हुई बैठक में प्रवासियों ने के संकट पर चर्चा के बाद म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के बयान को खारिज कर दिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, भूखे लोगों की तादाद भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था के मुताबिक भारत में 19 करोड़ 40 लाख भूखे लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य व कृषि संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरी दुनिया में भूखों की तादाद में कमी आई है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हमारे सहयोगी विनीत खरे। विनीत, बताएं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है।
भारत का आंकड़ा आपने दिया, भारत में सबसे ज्यादा भूखे लोग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 92 के बीच में भारत में दुनिया में करीब 1 अरब लोग भूखे थे। ये संख्या 2014-15 में घटकर करीब 80 करोड़ हो गई है और चीन और पूर्वी एशिया के जो दूसरे देश हैं वहां स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। भारत में भी भूखों की तादाद में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में भारत में भूखे लोगों की संख्या करीब 21 करोड़ 10 लाख थी और अब यह घटके 19 करोड़ 40 लाख हो गई, जैसा कि आपने बताया। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी आबादी के मुकाबले भूखे लोगों की तादाद में कमी लाने की दिशा में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद की जाती है कि भारत में चल रहे सामाजिक कार्यक्रम गरीबी और भूख के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। चीन ने भारत से बेहतर काम किया है, वहां 1990 से 1992 में जो भूखे लोग हैं उनकी संख्या करीब 28 करोड़ 90 लाख थी, करीब 29 करोड़, जो अब घटकर 13 करोड़ 38 लाख रह गई है। तो काफी गिरावट आई है चीन में।
बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे। भारत में भूखों की स्थिति पर अब से कुछ देर पहले मैंने बात की खाद्य मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से और सवाल रखा कि हालांकि भारत में भूखों की तादाद घटी है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे भारत में या खराब?
इसका दो तरीके हैं देखने के। एक तो ठीक है, अपने आप को शाबाशी देने का तो ये अवसर बन सकता है कि हम देखिए पहले हमारे पास जैसे आपने कहा 21 करोड़ थे, अब 19.5 करोड़ हो गए हैं। लेकिन मेरा इसको देखने का नजरिया ये है कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूखों की आबादी है या तादाद है वो भारत में है। तो ये सब सहारन अफ्रीका या अफ्रीका के जो और भी देश गरीब माने जाते हैं उनसे भी भयंकर सिचुएशन है। तो जो कंट्री अपने आप को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ये मान रही है कि आज हम इमर्जिंग इकोनॉमी है और इतने उसमें पॉपुलेशन जो है वो अभी भूख के उसमें दायरे में रहे, तो मुझे लगता है ये तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सारी इकोनॉमिक जो रास्ता है डेवलपमेंट का उसको दोबारा देखना पड़ेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो चीन ने काफी बेहतर भारत से काम किया है। 1990 और 1992 में वहां पर जो भूखे लोग थे वो 28 करोड़ 90 लाख थे जो कि 13 करोड़ घट गए। तो मतलब क्या हमारी ये नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम बेहतर काम नहीं कर पा रहे या संतोष के लिए इतना ही पर्याप्त कि अब हमने तादाद घटा दी?
कहीं तो एक सवाल जो है वो खटकता ये है कि दुनिया में अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े मुल्क हैं, उसमें से जिन देशों में भूख कम हुई है वो नॉन डेमोक्रेसी है, यानी वो कम्युनिस्ट है या डिक्टेटरशिप। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कई रिपोर्ट्स में ये दर्शाया गया है। और दूसरा ये है कि ऐसे टाइम पर जब अमेरिका में भी भूख जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और यूरोप में भी बढ़ रही है, भारत में जो हम देख रहे हैं इसमें एक चीज हमें देखने बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले जो हमारा नॉर्म था, जो क्राइटेरिया था भूख को नापने का या हंगर नापने का, वो हमारा कैलोरीज के ऊपर बेस था जिसमें हम 2400 कैलोरीज पर कैपिटा मान के चलते थे। तेंदुलकर कमेटी ने उसको घटाकर 1200 कैलोरीज कर दिया है। तो लाजमी है कि भूख आपकी कम हो जाएगी, भूख के परसेंटेज की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है।
आप ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है?
मैं आपसे वही याद कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इसको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि यूएन में तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जब भी बात करता है तो वो सरकारी आंकड़ों को लेकर चलता है, तो वो अपने आप के इंडिपेंडेंट वो कभी नहीं करते हैं, कभी चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा विचित्र सिचुएशन है कि एक तरफ तो हमारा हमने खुद ही उसके जो क्राइटेरिया को कम कर दिया है, जो नॉर्म्स है 2400 से कम करके हमने 1200 कर दिया, अलग उसके बास्केट को बढ़ाया गया है, उसमें कई चीजें हमने और भी जोड़ी हैं गरीबी को जोड़ने के, लेकिन जो भूख का जो पैमाना है अगर हमने उसको कम कर दिया है तो मुझे लगता है कि अगर हम 1700 कैलोरीज पर कैपिटा से कम करके 1300 पर ले आते हैं तो शायद हमारे देश की भूख मिटी जाएगी।
भारत में भूख की स्थिति क्या है इसका विश्लेषण कर रहे थे खाद्य मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अधेड़ व्यक्ति की कथित तौर पर भूख से हुई मौत के बाद राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और खाद्य सुरक्षा कानून पर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य में पिछले 8 दिनों में भूख से कथित रूप से ये दूसरी मौत है। आलोक पुतुल की रिपोर्ट रायपुर से।
बिलासपुर जिले के पेंड्रा में मरणासन्न अवस्था में पाए गए इस अधेड़ को स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया था जहां कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। अधेड़ का पोस्टमार्टम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हेमंत तवर ने माना कि मृतक के पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि पूरे मामले पर जिले के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है।
उसकी जानकारी अभी जिलाधीश से मंगाई है कि क्या उसके कितने जमीन थे, कितने उसकी खेती थी, घर में उसकी चावल था कि नहीं, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा।
पिछले सप्ताह ही सरगुजा के नर्मदापुर इलाके में अपने परिजनों से भटकने वाले एक बच्चे शिवकुमार की भूख से मौत हो गई थी। इसके बाद से कांग्रेस के 3 विधायक अपने समर्थकों के साथ पिछले 3 दिनों से सरगुजा जिले में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिलासपुर में भूख से कथित मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को असफल बताते हुए उससे इस्तीफा मांगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कहते हैं,
उनको जो टारगेट डिसाइड करना चाहिए कि मोस्ट नीडी गवर्नमेंट किसके लिए चाहिए, मेरे और आपके लिए गवर्नमेंट की क्या जरूरत, हम तो अपना काम कर ही लेते हैं। जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सक रहा है उसको ही देखने का काम वेलफेयर स्टेट का है, नहीं तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट का कोई औचित्य नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जिस सार्वजनिक प्रणाली को इस तरह की मौत के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, असल में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से राज्य में पीडीएस की व्यवस्था में कई परिवर्तन किए गए हैं। पहले राज्य में एक राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम चावल दिया जाता था, अब प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल दिया जा रहा है। इस बदलाव से राज्य के 29 लाख गरीब परिवारों को कम राशन मिल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पिछले कुछ महीनों से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिए जाने वाला चना, मटर और गेहूं का वितरण भी बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का मानना है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल है।
पिछले 10 दिनों के अंदर ये भूख से हुई मौत की दूसरी घटना है। ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक है।
इन आरोपों के बीच कांग्रेस ने राज्य भर में भूख से होने वाली इन मौतों के मामले में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कही है। जाहिर है इन आंदोलनों का सरकार पर कितना असर होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी इंडिया बोल।
ऐसे वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं जो साल भर में सांसद निधि का एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। सांसदों को इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। पिछले एक साल में सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च न कर पाने वाले सांसदों की संख्या 298 है। राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल का विषय यही है कि जनता के नुमाइंदे जनता पर ही धन क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं, आखिर वजह क्या है। मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था फीफा भ्रष्टाचार के मामलों से जूझ रही है, ज्यूरिख में चल रही इसकी कांग्रेस में इसके 209 सदस्य अपने नए अध्यक्ष को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर है जहां 5वीं बार अध्यक्ष बनने की उम्मीदवारी कर रहे हैं मौजूदा अध्यक्ष सैप ब्लैटर और जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
कुछ ही देर में फीफा के 209 सदस्य अपने नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि मौजूदा अध्यक्ष सैप ब्लैटर क्या 5वीं बार भी फीफा के अध्यक्ष बन पाएंगे या उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे 39 साल के प्रिंस अली बिन अल हुसैन उनकी इस राह को रोक देंगे। पहले चरण में जीतने वाले उम्मीदवार को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, यानी कुल 140 वोटों की। अगर ये बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरे चरण का मतदान होगा जिसमें अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को जीता घोषित कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों से ब्लैटर खुद को पहले ही अलग कर चुके हैं। इस मौके पर भी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ब्लैटर ने कहा है कि फीफा एक कठिन दौर से गुजर रहा है और वे इसे उबारना चाहते हैं। जब सैप ब्लैटर फीफा कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तो एक फलस्तीनी महिला प्रदर्शनकारी ने कुछ देर के लिए सभा को बाधित कर दिया। ब्लैटर के संबोधन के बीच में इस महिला ने फलस्तीन का झंडा लहराया और जोर से चिल्लाते हुए इसराइल को फीफा से बाहर करने के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद ब्लैटर ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और सुरक्षा कर्मियों ने इस महिला को सभा कक्ष से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ ब्लैटर के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने कहा है कि फीफा को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो फीफा के घटनाक्रमों की जिम्मेदारी ले, न कि आरोपों को दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करे। उन्होंने कहा है कि वे फीफा को अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र फीफा में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।
डुजारिक
कह रहे थे कि हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की फीफा के साथ विश्व कप या अन्य आयोजनों में भागीदारी रही है। ये भागीदारी इन बड़े खेल आयोजनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के शांति संदेश को प्रसारित करने के लिए रही है। और मुझे नहीं मालूम कि हम किसी भी तरह फीफा में भ्रष्टाचार पर चल रही इस जांच में शामिल हैं। पिछले 17 सालों से फीफा का नेतृत्व कर रहे ब्लैटर को तीसरी दुनिया के देशों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के उनके कामों के लिए इन देशों का काफी समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी प्रिंस अली बिन अल हुसैन को यूरोपीय देशों की ओर से अधिक समर्थन है।
फीफा में हो रहा है नए अध्यक्ष का चुनाव।
भरोसा वही, बस जमाना बदला। राजनीति वही, बस शासक बदला। बीबीसी हिंदी वही, बस प्रोग्राम बदला। बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
मई 1965 में भारत के 9 पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया था। उस बड़ी उपलब्धि के 50 साल पूरे होने पर रेहान फजल याद कर रहे हैं दिलेरी और जीवट से भरे उस पूरे अभियान को आज की विवेचना में।
तू है जहां है आसमां, मैं हूँ इस जमीन पे आहा, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो दूरियां, कितनी भी हो मजबूरियां, वो हो के
29,029 फीट की ऊंचाई को आप आसमान नहीं तो और क्या कहेंगे। दुर्गम चढ़ाई, गहरे ढलान, ऑक्सीजन की कमी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा और शून्य से भी 40 डिग्री नीचे के तापमान के बावजूद हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर नीचे की दुनिया को निहारे। वैसे तो पर्वतारोही एवरेस्ट को तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल चढ़ाई नहीं मानते, लेकिन इसका सबसे ऊंचा होना ही इसे सबसे खास बनाता है। यूं तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरके ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन 1965 में पहली बार किसी भारतीय दल ने न सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई बल्कि एक दल के 9 सदस्यों द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कैप्टन एमएस कोहली इस 21 सदस्यीय भारतीय दल के नेता थे।
हम जब भी समझते हैं जितनी चोटियां हैं पहाड़ों की, हिमालय की, हम उनको मंदिर की तरह मानते हैं। हम अपने अपने मजहब के हिसाब से सब लोग ऊपर जाके करते हैं प्रेयर। आपने देखा होगा कि हमारी किसी भी किताब में, मैंने 27 किताबें लिखी हैं, किसी किताब में भी कांकेस का वर्ड यूज नहीं किया। हम लोग होमेज देते हैं, ऊपर जाके भगवान की मथा टेकते हैं।
20 मई 1965 को एस चीमा और नवांग गोम्बू सुबह 3 बजे उठे। उन्होंने गर्मा गर्म कॉफी पी, अपने आप को अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार किया और 5 बजे धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से एवरेस्ट की ओर बढ़ निकले। एडवांस बेस कैंप और बेस कैंप पर तेजी से धड़कते दिलों के साथ सभी लोगों ने अपनी दूरबीनें दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तान रखी थी
कि ये कुछ 5:30 बजे सुबह निकले थे और दिन को 9:30 बजे सुबह समिट के ऊपर पहुंच गए। आधा घंटा रहे वहां पे। इतना जल्दी समिट पे कोई भी नहीं पहुंचा था। पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो है, लेकिन वापस आना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब जो आदमी समिट के ऊपर पहुंचता है वो खुश होता है सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको फिक्र लग जाता है कि अरे मैं जिंदा बेस कैंप वापस भी पहुंचूंगा कि नहीं।
मैंने कैप्टन कोहली से पूछा, आप तो नीचे थे, आपको कब और कैसे पता चला कि चीमा और गोम्बू एवरेस्ट पर जा पहुंचे हैं?
سب سے پہلے تو گردیال سنگھ نے کہا کہ وہ لوگوں نے چڑھنا شروع کر دیا ہے، کوئی 8:30 بجے میں نے دیکھا ہے اچھی سپیڈ پہ اوپر جا رہے ہیں۔ جب وہ 25 فٹ نیچے رہ گئے سمٹ کے، تو کرنل کمار نے واکی ٹاپی پہ شاؤٹ کیا، کولی کانگریچولیشنز، دے آر آلموسٹ آن دی سمٹ ناؤ۔ تو میں نے پھر فٹو فٹ میسج انڈیا بھیجا، تو شام کی ریڈیو نیوز میں بھی آ گیا 20 کو، اور اگلے دن پیپروں میں بینر ہیڈ لائن میں آ گیا۔
اس کے بعد دو دو دنوں کے انتر پر سونم گیاتسو، سونم وانگیال، سی پی وہرا اور انگ کامی سمٹ پر پہنچے۔ پورے ابھیان کے دوران صرف چڑھائی کے بارے میں ہی بات نہیں ہوتی، موسم خراب ہونے پر منورنجن بھی ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی۔ نریندر کمار اس ابھیان دل کے اپ نیتا تھے۔
جب موسم خراب ہو گیا تو ہم سب نیچے آ گئے، خوب تاش کھیلتے تھے۔ میں اپنے ساتھ ایک جیسے یدی کا پاؤں ہوتا نا، وہ یہاں سے لکڑی کا بنا کے لے کے گیا تھا، تو میرا ٹینٹ سب سے آگے ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں نے وہ یدی کی ٹینٹ اس کے پاؤں سے کر کے نشان لگا دیے، تو فرسٹ آدمی جو گیا ٹوائلٹ کے لیے، یدی یدی یدی، ساری دنیا یہ سب لگے اپنے وائرل سیٹل بھیجنے کے لیے، ہم نے یتی کے فوٹو دیکھے ہیں، ایسے ڈونٹ وری، یہ تو میں نے مزاق کیا تھا۔
25 مئی کی صبح جب میجر اہلوالیا جگے تو پھو دور جی ان کے لیے چائے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات کیمپ 3 پر زبردست ایوالانچ آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ چائے چھوڑ کر اہلوالیا باہر بھاگے، وہاں انہوں نے جو درشیہ دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
ہمارا جو سامان تھا، پرٹیکولرلی آکسیجن سلینڈر، وہ ہم نے کیمپ 3 میں ہمارے سے جو آگے تھا وہاں اسٹاک کر دیا تھا سارا۔ ہمارے جانے سے ایک دن پہلے سویرے ہم نے بڑا زور کا دھماکہ سنا، تو ہم نے کہا یہ تو ایوالانچ ہے۔ ہمارا جو کک ہے وہ آیا 6 بجے تھے سویرے، کہتا جی وہ دیکھو سامنے آپ کا کیمپ تو بالکل کور ہو گیا برف سے، اور جو لیڈر تھے کولی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، آپ لوگ نہیں جا سکاؤ گے بیکاز آپ کی جو آکسیجن ہے ساری دب گئی ہے ادھر۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ایکسپیڈیشن ہم کلوز کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا بتایا کہ دیکھیے آپ، ہم صرف 6 لوگ چڑھے ابھی تک، پر اگر ہم 1 یا 2 اور آدمی اوپر بھیج دیتے ہیں تو ہم ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے آپ 5 روپے دیجیے، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، نہیں ہوگا تو میں آ جاؤں گا واپسی۔ تو ہم ادھر گئے، ہم نے دیکھا وہ تو بالکل سارا سفید تھا، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے شروع کریں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ چلو 5 ڈائریکشن سے ہم تھوڑا تھوڑا کھودنا شروع کرتے ہیں آئس ایکس کے ساتھ۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھودا، کچھ نہیں ملا۔ پھر سب شرپا اور ہم ناراش ہو کے ہم نے کہا بھگوان کو ذرا پرارتھنا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کی، میں نے بھی کی، پھر ہم نے ڈگنگ شروع کر دی۔ پھر ایک میرا آئس ایکس جو تھا وہ زور سے کڑک کی آواز آئی ٹنگ کر کے، تو وہ تھا سلینڈر کے ساتھ لگا، اور وہ پھر ایک سلینڈر نکلا، 2 3 سارے سلینڈر، کیونکہ اور چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آکسیجن سلینڈر کی ضرورت تھی، وہ پھر ہمیں مل گئے۔ اور جب میں آیا تو کیپٹن کولی خوش ہو کے کہتے ہیں ہاں آپ ٹرائی کرو۔
29 مئی کو اہلوالیا، پھودور جی، بہگڑا اور راوت نے 2-2 کے گروپ میں ایوریسٹ کی اور بڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ بہگڑا نے کہا کہ وہ اور آگے نہیں جا سکتے۔
ہم 2 پارٹی تھی، میں تھا اور پھودور جی ایک میں، ہم آگے اور ہمارے ساتھ پیچھے بھوگنا اور راوت۔ سویرے سویرے ہم 4 بجے کے قریب اٹھ گئے تھے، اور 4 بجے اٹھ کے تیار تھی، اور وہ جوتے کریمپون ڈالے، جہاں چیز تو ڈال کے سوتے ہیں، اور پھر ہم نے سامان اپنا اٹھایا اور کوئی 5 5:30 بجے کے قریب تیاری ہو گئی چلنے کے لیے۔ تو میرے جو پاؤں تھے وہ بڑے ٹھنڈے ہو رہے تھے، پتا بھی لگ رہا کہ ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، زمین میں برف میں زور زور سے کک کرو، کک کر کر کے تھوڑی دیر میں گرم ہو گئے۔ جیسے چلنے لگے دور سے ہم نے دیکھا وہ کوئی آ رہا تھا، پھودور جی کہتا ہے او یٹی آ رہا ہے یٹی، تو تھوڑی دیر تک رکے تو دیکھا راوت اکیلا چلا آ رہا ہے۔ وہ ہم نے کہا تیرے کو کیا ہو گیا، کہتا ہے وہ بھوگنا تھوڑے ان کو خارش ہو رہی ہے، بیمار ہے، وہ کہتے نہیں آئیں گے، تو وہ وہیں پہ میں پھر پہلے کہا میں اکیلا چلتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیرے کو ڈر نہیں لگتا اکیلا تو کیسے سلپ کر جائے، کہتے نہیں نہیں میں سوچتا تھا کہ آپ لوگوں کو مل لوں گا۔ پھر اس کو ہم نے اپنی روپ میں ڈالا اور آگے چلے، اور پھر چلتے چلتے باقی ہسٹری ہے۔
تینوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ ایوریسٹ پر قدم رکھا۔ وہاں پر پہلے آئے دل دوارا لگایا گیا ترنگا جھنڈا پھیرا رہا تھا، لیکن ہوا کے زور سے تار تار ہو چکا تھا۔
سب سے پہلے ہم نے بھگوان کا شکرواد کیا. ایورسٹ کلائم کرنے سے آپ کو پروف لینا پڑتا ہے, فوٹوگرافی. تو میں کیونکہ آفیشیل فوٹوگرافر تھا, میرے کو کافی فوٹو لینی پڑی چاروں طرف. پودور جی کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک تحفہ آیا آپ کے لیے. میں نے کہا کیا ہے تحفہ آیا؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ بیٹھ یہ کھڑے ہو جلدی. میں نے کہا جلدی کرو کہ ہمیں نیچے چلنا ہے اور آکسیجن کم ہو رہی ہے. اس نے ایک تھرموس نکالی چھوٹی, اس میں گرم کافی, اور پھر ہم نے وہ گرم کافی کی, اس کا آنند ہی کچھ اور تھا. اور سمٹ کے اوپر جب ہم تھوڑا اسکریچ کر رہے تھے, کسی نے چاکلیٹ رکھ دی ہوئی تھی, تو پھر ہم نے وہ چاکلیٹ نکال کے وہ چاکلیٹ کھائی اور یہ کافی پی. بس 29th کو ہم نے یہی کھایا تھا بس. میں نے پھر اپنی ریسٹ واچ رکھ دی, پھر میں نے روزری رکھی اپنی, گرو نانک کی فوٹوگراف رکھی. کیا ہے کہ ایوریسٹ ٹائم آتا ہے نیچے اترنے کے لیے, وہ پرائیڈ آپ میں آتی ہے کہ آپ کچھ کر پائے, پر ایک وہ دکھت وہ سیڈنس ہوتی ہے, ٹنج آف سیڈنس, وہ ایک آنے لگی کہ اب تو دیر از نتھنگ ہائی ٹو کلائم.
کوہلی اور نریندر کمار شکھر پر خود نہیں گئے کیونکہ یہ دونوں دل کا نیتتو کر رہے تھے.
میں ان کے ساتھ تو نہیں تھا پارٹیز کے ساتھ, لیکن میرا دھیان, میرا دماغ سب ادھر ہی تھا. اور جتنے یہ لوگ چڑھ رہے تھے, میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ساتھ اپنا چڑھ رہا تھا. جتنے یہ تھک رہے تھے, میں بھی اتنی کنسنٹریشن کر کے تھک رہا تھا. جب سمٹ کے اوپر پہلی پارٹی پہنچی بہت خوش ہوا, سیکنڈ پہنچی تو میں ناچنے لگا, تیسری پہنچی تو پھر تو ناچنے کا بھی, اب میں نے کہا کہ بہت ہی خوشی, اتنی خوشی کبھی ہوتی نہیں. اور چوتھی کا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے, بالکل جیسے میں پاگل ہی ہو گیا.
میں نے میجر اہلوالیہ سے پوچھا کہ جب آپ سب پروتاروہی پہلی بار آپس میں ملے تو کیا ہوا؟
وہ سب لوگ باہر آگے کیمپ سے دوڑ کے, سب نے ملے جفی پار ڈال کے اور اٹھایا, کوئی اٹھا رہا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے, مطلب حالت بگاڑ دی ساری. جور جور سے دبا رہے ہیں, ہگ کر رہے ہیں, پر وہ مومنٹ اور ہوتا ہے, جوائے فل مومنٹ ہوتا ہے. اور سب میں خوشی آ گئی کہ ایک بڑا بہت بڑا کام ہوا. دو چیزیں بہت ضروری ہوئی, ایک تو ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, اور دوسرا ہم نے یہ ورلڈ ریکارڈ توڑا. اور اس کے بعد ایوریسٹ 5 سال کے لیے بند ہو گیا.
جب یہ دل بھارت پہنچا تو پالم ہوائی اڈے کا درشیہ دیکھتے ہی بنتا تھا. کاریواہک پردھان منتری گلزاری لال نندا اپنے پورے منتری منڈل کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے تھے. راشٹریہ ہیروز کی طرح ان کا استقبال ہوا.
ارے صاحب, ایک تو جب ہم پہنچے وہاں پہ دلی میں, وہاں پہ ساری کیبنٹ وتھ پرائم منسٹر, ہم حیران ہو گئے. ایک اسپیشل ریکوٹا آیا تھا, اس کے بعد ایک کے بعد دوسری پارٹی, اور جہاں بھی پارٹی میں جائیں کافی پریزنٹ ملے. چینسلر کلب میں گئے, انہوں نے ہم کو سونے کی گھڑی دے دی. میں پارٹی لے کر گیا تھا اہلوالیہ کی, وہ پنجاب میں, میں اہلوالیہ اور چوما وہاں پنجاب میں گئے تھے. ارے بھائی, جس دکان میں جائیں پھل ہوں تو پھل ڈالتے ہیں ٹرک, ایک پیچھے ہمارے پاس سیزن ٹرک چلتا تھا. جس کپڑے ہیں تو کمبل ڈالیں گے, یہ کر دیں گے وہ. ارے باپ رے, جلوس نکلتا تھا بازار سے, وہ مشکل ہو جاتا تھا. خبریں بڑی آئی تھی, نیوز پیپر میں تھا.
تو ہے جہاں ہے آسمان, میں ہوں اس زمین پہ یہاں, ہم کو پر ملنا تو ہے کتنی بھی ہو.
ریحان فضل, بی بی سی دلی.
کتنی بھی ہو مجبوری.
ریحان فضل کی یہ ویوچنا آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیے گا. اور اس سے پہلے کے کارکرم میں آپ سے ودا لیں, مکھیہ سماچار ایک بار پھر سے سنتے ہیں.
بھرشٹاچار کے آروپوں کو لے کر چرچا میں رہی فٹ بال کی ویشوک سنستھا فیفا کے ادھیکش کے لیے زیورک میں 209 سدسیہ متدان کر رہے ہیں. فیفا کے ورتمان ادھیکش سیپ بلیٹر 5ویں بار ادھیکش پد کے لیے دعوے داری کر رہے ہیں. سنیکت راشٹر کی سنستھا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وشو میں بھوکے لوگوں کی سنکھیا بھارت میں سب سے زیادہ ہے. سنیکت راشٹر کے خادی و کرشی سنگٹھن کی رپورٹ کے انوسار بھارت میں 19,40,00,000 لوگ بھوکے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ لیبیا میں اسلامک اسٹیٹ کی شاخہ نے سرت شہر کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے. یہ اسلامک اسٹیٹ اور ستھانیہ لڑاکوں کو ملی سب سے بڑی سفلتا ہے. سعودی عرب کے پوروی پرانت شیعہ بہل شہر دمم میں ایک مسجد پر تازہ حملے میں 4 لوگ مارے گئے ہیں. اسلامک اسٹیٹ نے شیعہ مسجدوں پر ہوئے دوسرے آتمگاتی حملے کی ذمہ داری لی ہے. बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के संक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक डेढ़ घंटे बाद, यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे हमारी चौथी सभा में। तब तक मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें, नमस्कार।